ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। गोपेश गोपी काकांता तप्ता कंचना गोरंगी राधे वृंदावनेश्वर विश्वानो सुत देवी श्री कृष्ण चैतन्य मुक्ता वैद्य गदाधर शिवास हरे कृष्ण 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 हरे राम। हरे कृष्णा जी क्वेश्चन।
हरे कृष्णा बापू जी आपके श्री चरणों में प्रणाम। बापू जी किसी ने ये प्रश्न किया है आउट ऑफ सिटी से कि हमसे जो बड़े होते हैं जैसे हमारे पिताजी हैं माँ हैं चाचा चाची नाना नानी इत्यादि कभी हम उन लोगों को नाम से नहीं पुकारते हैं लेकिन कृष्ण सबसे बड़े हैं तो फिर हम उनका नाम क्यों लेते हैं उनको नाम से कैसे पुकारते हैं
फिर
मतलब ये कोई मतलब रेस्पेक्ट नहीं हुआ ना जैसे कि हम उनको रेस्पेक्ट के कारण उनका नाम नहीं लेते हैं लेकिन हम कृष्ण का नाम लेते हैं जबकि वो सबसे बड़े हैं।
गुड वेरी गुड। मैं अपने गुरु महाराज को कहता हूं भक्ति पाठ और आप लोग मुझे क्या कहते हैं तो ये आप लोग क्यों मेरा नाम ले रहे हो?
नहीं ये तो एक उपाधि है ना जो हमने आपको दी है।
एक्चुअल कृष्ण भी कृष्ण की उपाधि है। एक्चुअल सही मानो तो भगवान का कोई नाम ही नहीं। भगवान का कोई नाम नहीं है। कैसे? कृष्णा 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 नाम क्यों पड़ा बताओ। मैं माइक में बोलूंगा मैं तुमसे से पूछ रहा हूं।
सबको अट्रैक्ट करते हैं इसलिए
तो सबको अट्रैक्ट करते हैं इसलिए उनका नाम कृष्ण है। श्याम
है
सांवले है तो श्याम। गोपाल
गायों को पालते हैं।
गोविंद
गायों को आनंद देने वाले इंद्रियों को आनंद देने वाले।
मधुसूदन
मधुर राक्षस को मानो।
केशव
केशी राक्षस को मानो।
केशिनी सुदन
केशी राक्षस को मानने वाले।
मदन मोहन
कामदेव को आकर्षित करने वाले।
योगेश्वर
योगियों के भी ईश्वर।
पार्थ सारथी
पार्थ के सारथी बने अर्जुन के सारथी बने।
ठीक है ये सब के सब भगवान की गुण है। लेकिन मूल गुण क्यों क्या है उनका सबको वो अट्रैक्ट करते हैं इसलिए अनादि काल से उनका नाम है क्या कृष्णा। अब एक उदाहरण दो मैं आप लोग को कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं समझा रहा हूं। जिस तरह से जब भगवान श्री कृष्ण की छठी हुई तो गर्ग मुनि ने क्या नाम रखा वासुदेव क्योंकि वसुदेव का पुत्र है इसलिए वासुदेव पड़ा और बलराम जी का नाम इसलिए पड़ा कि इसमें बहुत ही बल है और आनंद देगा, इसलिए बलराम। समझ में आई? इसी तरह से आप सबों का नाम भी कैसे रखा जाता है, छठी देख के। तो छठी में आदमी की राशि निकालते हैं और राशि के अनुसार उनका नाम होता है। इसी तरह से जैसे आपका नाम राशि अनुसार होता है, भगवान का नाम उनके गुण अनुसार होता है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति सह। और भगवान के जितने नाम हैं उन सबों में उन्होंने अपनी निज शक्ति भर दी है, ये महाप्रभु का कहना है। ऐसे तो भगवान को कोई भगवान ही ना कहे, क्योंकि भगवान खुद में क्या है बताओ?
छह ऐश्वर्य जिनमें विद्यमान रहते हैं उनको उस भगवान बोलते हैं।
उनमें से अगर एक भी ना हो तो
भगवान नहीं कहते।
तो भगवान खुद में एक एक गुण है कि छह गुण है तो भगवान है वो। तो वास्तव में जो हमारा ठाकुर है वो अनामी है। कौन है? अनामी है। उनका कोई नाम ही नहीं है। लेकिन भक्त उनको कृष्ण गोविंद गोपाल हरि हरि हरने वाला इस तरह से पुकारते हैं। तो ये सब गुण है। इसलिए भगवान जैसे मैं, आप लोग मुझे क्या बोलते हैं, तो ये मेरा नाम थोड़ी है। और अगर बापूजी कहोगे तो आप कोई मर्यादा थोड़ी तोड़ की, बल्कि ये तो मेरा एक क्या है, एक रिस्पेक्ट है। क्योंकि मैं आप लोगों का बापूजी मतलब पिताजी, तो आप लोग मुझे बापूजी बोलते। ऐसे कृष्ण अट्रैक्ट करते हैं इसलिए वो कृष्ण है। लेकिन उनका मूल नाम ही, जो भगवान का मूल नाम है जो अनादि काल से, वो कृष्ण है। मूल जो नाम है वो क्या है? कृष्ण है। और कृष्ण का मतलब है ऑल अट्रैक्टिव। लेकिन मूल नाम उनका कृष्ण है जी। और कोई प्रश्न?
हरे कृष्ण बापूजी, आपके श्री चरणों में प्रणाम। बापूजी, कृष्ण भगवत गीता के सेकंड चैप्टर के 62 श्लोक में कहते हैं कि इंद्रियों के विषय का चिंतन करते हुए मनुष्य उनमें आसक्त हो जाता है और आसक्ति कामना और फिर क्रोध में उत्पन्न होती है। सो दिस कंबाइंड टुगेदर कैन लीड टू स्पिरिचुअल डाउनफॉल। आपने लास्ट वीक सत्संग में समझाया था कि जो भी हमारे सेंसेस है, जो भी हमारी वर्डली अटैचमेंट है, मोह है, उसको अगर हम राधा वृंदावन चंद्र में ट्रांसफर कर देते हैं तो हम अपनी भक्ति को, अपने कृष्ण कॉन्शियसनेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो ये तो हो गया डिवोशन का प्रोटेक्शन। पर हम अपने जो गुरु तत्व है उसको निंदकों से और जो नास्तिक है उनसे कैसे प्रोटेक्ट और डिफेंड कर सकते हैं? हाउ कैन वन प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द ऑनर ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर? एक बेस्ट डिफेंडर अपने गुरु के कैसे बन सकते हैं?
अपने करेक्टर से। अपनी साधना से, अपने आचार और विचार से। क्योंकि चावल के एक दाने से पूरे देगची का पता चल, एक दबाते पता चल। ऐसे एक शिष्य, सिर्फ एक शिष्य, अगर एक सदशिष्य, सिर्फ एक सदशिष्य, पता नहीं वो अपने गुरु की महिमा कहां से कहां तक पहुंचाता है। एक श्री प्रभुपाद पश्चिम के देश, क्या इंडिया में भी, मुझे क्षमा करे भगवान और संत महापुरुष भक्ति सिद्धांता महाराज को इंडिया में भी कोई इतना पहचानते नहीं थे, और विदेश की तो बात ही दूर है। लेकिन शिला प्रभुपाद जी महाराज ने अपने गुरुदेव की महिमा तीन लोक में पहुंचाती है अभिजिक्ष, तो सिर्फ फिर भवना सिर्फ एक शिष्य पता नहीं कहां कहां। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की महिमा पहुंचाई, इसलिए हम खुद कहते नमस्ते सरस्वती। सरस्वती कौन है? इस भक्ति सिद्धांत महाराज है, आप सरस्वती माता की बात मत समझिएगा। हम कहते नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारित है। तो हम अपने मंत्रों में भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का स्मरण करते। तो एक शिष्य ने अपने प्रचार, अपनी आभा, अपने टैलेंट, अपनी साधना, अपने समर्पण से अपने गुरु महाराज को कहां कहां तक पहुंचा दिया। वो लोग जो कभी जानते भी नहीं थे वो भी जानने लग गए। इसलिए आप चाहते हो आपके गुरु की महिमा हो, तो फिर आप अपना करैक्टर, अपनी साधना, अपना भजन, अपना प्रचार और अपनी पर्सनैलिटी को ऐसे डेवलपमेंट करो कि लोग दूर से कहे वाव किसी महापुरुष का शिष्य आ रहा है। जिस तरह से एक अच्छा क्रिकेटर जब बहुत अच्छी बैटिंग करता है तो उसको तो क्रेडिट जाता है लेकिन उसके कोच को भी जाता है। इसलिए आपने देखा होगा हमारे भारत में यहां पर खेल रत्न का एक पुरस्कार है, उसके साथ एक अर्जुन अवार्ड भी है जो कोचिस को मिलता है। द्रोणाचार्य अवार्ड भी है जो कोचिस को मिलता है, अर्जुन अवार्ड खिलाड़ियों को मिलता है। तो ये है हमारे भारत में भी। तो जब शिष्य ऐसे निकलते हैं महान, तो उनकी गुरु की महिमा तो खुद ब खुद होती है। और जब हम अपना जीवन संसार में बिल्कुल बर्बाद करते हैं, स्वाभाविक रूप से हमारे गुरु की महिमा पे भी आ जाती है। इसलिए अगर आप चाहते हो आपके गुरु की महिमा हो, तो अपना करैक्टर, अपनी पर्सनैलिटी, अपना प्रचार, अपनी साधना से बताओ कि हम किसकी शिष्य है। और आज मुझे खुशी होती है, मैं कल ही बात कर रहा था कि किसी भी पंथ का, किसी भी गुरु का शिष्य अगर हमारे यहां उल्लासनगर में हो तो पहचाना नहीं जाएगा कि किस महापुरुष का ये शिष्य है। लेकिन हमारा एक छोटा बच्चा भी दूर से पहचाना जाता है क्योंकि वो अपने यूनिफॉर्म में है, या तो गले में कंठी माला है या माथे पे तिलक या हाथ में जपमाला है, और जब वो निकलता है तो पूरी परंपरा का रिप्रेजेंटेशन करता है, पूरी परंपरा का रिप्रेजेंटेशन। इसलिए हमें अगर चाहते हैं कि अपने गुरु की महिमा बढ़ाए तो ऐसे बढ़ेगी जी। और कुछ
बापू जी? हमें हमारे गुरु महाराज के वर्ड्स इन्फ्लुएंस करते हैं कि एक्शंस?
वर्ड्स
इन्फ्लुएंस करते हैं कि एक्शंस?
देखिए जहां तक गुरु महाराज के एक्शन का संबंध है तो हम उनके साथ ज्यादा रहते नहीं, हम उनके साथ मोस्टली कितना रहते हैं, एक घंटा रहते हो आप लोग। लेकिन गुरु महाराज की हर चीज इन्फ्लुएंस करती है, उनकी करुणामय नेत्र। देखो एक बात बताओ, एक नॉर्मल आदमी की भी बॉडी लैंग्वेज जो है बड़ा इन्फ्लुएंस करती है। किसको बोलते हैं किसको? बॉडी लैंग्वेज। कुछ लोगों की नजर ऐसी होती कि उनको वो देखते हैं तो हमें कुछ होता है, होता ही है ऐसा होता है, होता है। कुछ लोगों के वाइब्रेशन ऐसे आते हैं कि हालांकि उसने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं है लेकिन अच्छा नहीं लगता उसकी वाइब्रेशन। कुछ लोगों की मुस्कुराहट इतनी जहरीली होती है कि मुस्कुराते तो हमको लगता है जैसे कोई विलन हंस रहा है, ऐसा होता है। तो बॉडी लैंग्वेज का बड़ा फर्क पड़ता है और जो एक क्या कहेंगे वाकई में महापुरुष है, सदगुरु है, उनकी बॉडी लैंग्वेज में प्रेम, करुणा, दया, ज्ञान, अर्थात उनको देखते ही हमें कृष्ण याद आने लगता है। उनको देखते ही हमें एक पॉजिटिविटी आने लगती है, देखते ही। तो ये गुरु महाराज की भगवान ने, जैसे एक छोटा सा उदाहरण दो, जब उद्धव वृंदावन जा रहे थे तब को पता है कृष्ण ने क्या किया? अपना वस्त्र दे दिए और अपने जैसा टच किया, नहीं तो गोपियां उनकी तरफ अट्रैक्ट। ऐसे गुरु महाराज जो हम कहेंगे प्रमाणिक गुरु है, उनको कृष्ण कहीं ना कहीं, जो ऑल अट्रैक्टिव कृष्ण है, उनमें से थोड़ा अट्रैक्शन वो गुरु को भी बख्शते हैं अपनी ही कला। इसलिए गुरु महाराज उस कला के जो कृष्ण ने उनको बख्शिश दी है वो हमें खींचते हैं, अट्रैक्शन करते हैं। फिर जैसे कृष्ण करुणा है, ऐसे गुरु महाराज भी करुणा। याद रखना, गुरु और शिष्य के साथ चलने का फार्मूला आज बताऊं आपको कि किस तरह से, हाउ कैन लीव टूगेदर गुरु एंड कृष्ण, कैसे? समझो, शिष्य गुरु के साथ श्रद्धा से रह सकता है, क्योंकि याद रखना भगवान की विग्रह की सेवा करना आसान है, गुरु महाराज की सेवा करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि विग्रह जो है वो भक्तों के अधीन है, जैसे वस्त्र पहना है, पहन लिया, जो भोग लगाया, ऐसी चलाया नहीं चलाया, जितने बजे उठाए जितने बजे सुलाए, लेकिन सदगुरु के हमें अधीन रहना पड़ता है, सदगुरु के हमें अधीन रहना पड़ता है। विग्रह की सेवा में कोई गलती होती है तो विग्रह कुछ नहीं कहती, लेकिन गुरु सेवा में है तो कभी हमें डांट भी खानी पड़ती है। फिर हम देखते हैं गुरु की सारी क्रियाएं साधारण सी, उनको भी भूख लगती है, उनको भी प्यास लगती है, वो भी बीमार होते हैं, वो भी बाथरूम जाते हैं, नींद आती है, कुछ उनको भी चाहिए होता है, हंसी आती, हंसते गुस्सा आता है, तो लगता है ये तो हम बिल्कुल हमारे जैसे। तो फिर उनके साथ रहना बहुत मुश्किल है, उनकी सेवा करना बहुत, कभी वो डांटे ही भी, कभी कुछ। फिर जितने बजे गुरु उठे उठना पड़ता है, जितने बजे सोए सोना पड़ता है। अब विग्रह को क्या, अगर जिस दिन आपको नींद आए आपने क्या किया, भले 8 बजे ठाकुर जी को सुला के खुद भी सो गए, यहां ऐसा नहीं कह सकते गुरु महाराज सो मुझे भी नींद आ रही है, आप ये नहीं कह सकते। वहां पर आपने जो भोग लगाया कृष्ण ने खा लिया, यहां गुरु महाराज कहते हैं ये बनाओ आज मुझे ये खाना, वो लेके आओ, ये बड़ा मुश्किल काम है। और वहां अपनी श्रद्धा को संभाल के रखना बड़ा डिफिकल्ट काम है। फिर लोग उनकी निंदाएं करते हैं, बहुत सारी बातें, क्योंकि जब गुरु इस संसार में है तो इंसानों जैसा ही तो है, फिर कोई उनकी निंदा भी करता है, कोई शंका भी करता है जो हमें सुननी पड़ती है, और सुन के कहीं हम ना हिल जाए इसलिए श्रद्धा को मजबूत रखना पड़ता है, क्योंकि अधिकतर लोगों की दृष्टि नेगेटिव है, ये बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए शिष्य गुरु के साथ कैसे रह सकता है, श्रद्धा से, और गुरु शिष्य के साथ कैसे रखता है, क्योंकि गुरु तो शिष्य तो गलतियां ही गलतियां करता रहता है, कृपा से। ये फार्मूला है गुरु शिष्य, शिष्य गुरु के साथ रहता है श्रद्धा से और गुरु महाराज शिष्य के साथ रहते कृपा से। इसलिए गुरु के साथ रहना है क्योंकि गुरु प्रकाश, प्रकाश मतलब आग, अग्नि तत्व है उसमें, तो आग के नजदीक लकड़ी जाएगी तो जल जाएगी और लोहा जाएगा तो वैसा ही हो जाएगा। ऐसे अगर शिष्य की श्रद्धा कहीं कमजोर है, खुद को समझता है, तो उसको दूर रहना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि उसकी श्रद्धा टूट जाए, उसको दूर ही रहना चाहिए। लेकिन यदि वो लोखंड है तो गुरु के नजदीक रहे तो एक ना एक दिन, जैसे लोहा आग के नजदीक रहता है तो वो भी आग के गुण आ जाते, ऐसे गुरु के शिष्य में वो गुण आ सकते, लेकिन बहुत ज्यादा उसके लिए श्रद्धा और मजबूती की जरूरत है। जी और कुछ? हाँ पूछते रहो, पूछते रहो, पूछते रहो।
बापू जी, अगर हम हमारे गुरुदेव का मंत्र देखें तो उसमें ऐसे कहा गया है कि भक्ति पाद प्रियायते, और अगर हम श्रीला भक्ति पाद जी का मंत्र देखें तो उसमें कहा गया है प्रभु पाद प्रियायते। तो एक शिष्य अपने गुरु का प्रिय कब बनता है, क्या उसके लिए भी सेम आंसर्स अप्लाई होते हैं?
देखिए जिन सेविया तिन पाया, गुरु का प्रिय बनने के लिए सिंपल फार्मूला है, अपने गुरु की आज्ञा का गंभीरता से पालन करो और एक मेंटल अंडरस्टैंडिंग होती है गुरु और शिष्य की। तीन तरह के शिष्य होते हैं, कितने तरह के? तीन प्रकार के शिष्य हैं। एक शिष्य अगर गुरु महाराज कुछ कहते भी हैं तो कहने के बाद भी वो नहीं करता, टालता रहता है, अरे मैं भूल गया, अरे मैं बिजी था, अरे। एक शिष्य है जो गुरु कहते हैं तो वो तुरंत कर लेता है, लेकिन एक है गुरु के कहने से पहले कर लेता है क्योंकि उसको पता होता, जैसे माँ को पता है मेरे ये शिष्य गुरु की माता का भी रोल प्ले करते हैं, उनको इतनी सेवा, उतनी पैम्परिंग, उतना उनका ध्यान रखना। दो तरह के शिष्य फिर है, एक गुरु का ध्यान करते हैं, एक गुरु का ध्यान रखते। गुरु का ध्यान करना आसान है, आंखें बंद करो, ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, कहीं भी ध्यान किया गुरु का ध्यान हो गया। तो गुरु के ध्यान करने में कुछ तपस्या नहीं, गुरु का ध्यान रखने में बड़ी तपस्या, बड़ी तपस्या है गुरु का ध्यान रखने में। इसलिए सवाल क्या था, मैं तो भूल जाता, प्रिय कैसे बने अपने गुरु के? तो जिन सेविया आज्ञा पे चलो, बहुत अच्छे ढंग से भजन करो और कृष्ण की सेवा करो। और एक बात याद रखो, जिनको आगे आना होता है सेवा में उनको कोई रोक भी नहीं सकता, लेकिन You have to wait, wait, wait or wait. मेरे गुरु महाराज और मेरे बीच सात समंदर, कितने? पॉसिबल ही नहीं था। ऐसे बड़े बड़े सन्यासी उनके इर्द गिर्द कि हम सोच भी नहीं सकते, एक से एक महापुरुष और फिर इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन, वो ये वो सन्यासी ब्रह्मचारियों की लाइन, श्रीला भक्तिपाद से किसी को मिलना भी नहीं मिलता था। बहुत सारी ऐसी स्थितियां ही जो आप सब जानते हो, और उन स्थितियों की आंधियों में वो सब के सब क्या हुआ, उड़ गए। और जो मैंने सोचा था, मैं तो सोचता था जब ये मंदिर बना मुझे पता था ये भक्तिपाद आई है, मुझे पता था, जबकि वो इम्पॉसिबल था उस समय। लेकिन न केवल आए बल्कि हमारे पास ही रह गए और यहीं से गोलोक यात्रा पे गए। इसलिए अपना भाव मजबूती से बनाओ। कहते हैं गुरु मारे, क्या बोला, गुरु जट करे, जट मतलब डांट दे, गुरु मारे गुरु जट करे, गुरु बोरे गुरु तार। गुरु से प्रीति निभाए, गुरु है भव कंडिहार। साकत की बातें बुरी, क्या बोला, ये जो संसारिक लोग हैं इनकी बातें भी खतरनाक है। साकत की बातें बुरी, बली गुरु की लात। अगर गुरु मार लाते भी मारते ना उसमें भला है, लेकिन गुरु होना चाहिए। हाँ, ऐसे नहीं कोई भी, जो प्रमाणिक गुरु है। और प्रमाणिक गुरु का मैंने कहा ना, उनको देखते ही हरि याद आने लगता है, उनको देखते ही पॉजिटिव आने, पॉजिटिविटी आने लगती, उनको देखते ही कि बिना किसी रीजन के मन में एक प्रसन्नता आने लगती है, उनको देखते ही आंखों में चमक सी आने लगती है। जो मेरे गुरु ने, मैंने अनुभव किया वो बता रहा हूं, और उनकी वाणी हमारे दिल में घर कर जाती है। उनके नेत्र हम पे, अगर उनकी नजर पड़ती है तो ऐसे फील आता है कि कोई एनर्जी हम में आ रही है। मैंने जो महसूस किया अपने गुरु के साथ, ये बता रहा हूं मैं अपने एक्सपीरियंस। तेरे साथ रह के मेरा वक्त गुजर जाता है, थोड़ी देर के लिए गम न जाने कहां चला जाता है, भूल जाते हैं हम, भूल गए हर बात, मगर वो भूल जाते सब कुछ। तुम्हें क्या बोल रहा था, साकुत की बातें बुरी, भली गुरु की लात। लात से सुख उपजे, बात से इज्जत जात। उनकी बातों में भी तुम्हारा बुरा है, सतगुरु की लातों में भी तुम्हारा भला है। श्री शिल प्रभुपाद जी महाराज के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज को कहते थे नरसिंह गुरु, और वो कभी अपने किसी शिष्य को डांट देते तो दूसरे गुरु भाई कहते कि आज हम सबों को मिठाई खिला। क्यों? बोला तुझको गुरुदेव की इतनी बड़ी कृपा मिली कि हम सबों को तो आज मुंह मिठा कर तुझे इतना कुछ मिला। तो आप बोलोगे फिर तो सभी तो डांटते और फिर गुरु भी डांटते। तो याद रखो, संसार में जो, संसार की नजर में जो नालायक होता है वो डांट खाता है, और गुरु महाराज की नजर में जो लायक होता है वो डांट खाता है। अब पता, आदमी संभल संभल के पांव किस पे रखेगा, जिसको पता है ये लकड़ी टूटने वाली नहीं, वहीं रखेगा, कमजोर पे तो नहीं रखेगा। ऐसे गुरु महाराज उसी को डांटते जिन पे विश्वास है, बाकी को तो बबलू माला नहीं, नहीं 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 बोल बबलू माला नहीं, ऐसे पुचकारते। जिसपे होता है कि ये मेरा अपना है, उसका तो फिर बस समझो क्या हाल होता है, वो भगवान ही जाने जी। और कुछ कुछ है? हाँ राधे,
हरे कृष्णा। बापूजी, गीता के सातवें अध्याय के 28वां श्लोक, जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्म में या इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्म का उच्छेदन हो चुका है, वो मेरी शरण में आते हैं, मेरी सेवा में तत्पर रहते हैं। और 18वें अध्याय में कहते हैं, सब कुछ छोड़ के तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें पापों से मुक्त कर दूंगा। तो बापू जी, पहले पाप समाप्त होते हैं तब कृष्ण की शरण में जाते हैं, या फिर कृष्ण की शरण में आने के बाद पाप समाप्त होते हैं?
वाओ, बहुत अच्छा सवाल। ले लो चॉकलेट लो। सुनो, सुनो मेरे बच्चों, सो 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 सो। ये जो कृष्ण कहते हैं कि पिछले जन्म में सातवें अध्याय में, और मैंने इस पे सातवें अध्याय पे एक बुक भी लिखी है, पूरे सातवें अध्याय, तो उसमें कृष्ण कहते हैं कि जिनके पाप समाप्त हो चुके हैं और इस जन्म के भी,
इस जन्म में जिन्होंने पुण्य कर्म,
पुण्य हो गए मतलब इसमें भी कोई पाप नहीं किया है, वो मेरी
शरण
में आते हैं। और दूसरी की तरफ कहते आंग त्वां मोक्ष्यामि। टेक्निकल क्वेश्चन, दिमाग चला आपका, वेरी गुड। तो सुनो भाई सुनो, अंग तो अंग सर्व पापे भयो मोक्षमस्मि, मां सचो तुम मेरी शरण में आ जाओ। अब शरण में तो आ जाओ, लेकिन आए कैसे? जैसे एक बिल्डर कहता है कि भाई ये फ्लैट इतने का है, इतने इतने पैसे आपको टोकन में देना पड़ेगा, इतना इतना आपको इंस्टॉल देना पड़ेगा, यहां से आपको लोन लेनी पड़ी। तो एक जनरल प्रोटोकॉल है, क्या है, क्या है, जनरल प्रोटोकॉल है, एक जनरल प्रोटोकॉल है, ये सबके लिए है। लेकिन एक व्यक्ति को वैसे ही फ्लैट मिल गया, क्योंकि उसको उसके पापा ने अपने पैसे दे दिए जो उन्होंने कमाए थे। ऐसे ये जो है कि भाई सब पाप जिसके समाप्त हो गए, और यहां पर उसके, ये हर एक के बस की बात नहीं है, 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 नहीं। ऐसा कौन सा इंसान होगा जिससे पूर्व जन्म के सारे पाप नष्ट हो गए, और अगर हो जाते तो फिर यहां पर वो आए क्यों, आए क्यों, है ना? और फिर इस जन्म में उसके पुण्य कर्म उदय हुए। भाई पुण्य कब करेगा? जब वो जन्म लेगा, और जन्म कब लगे? तब उसके कोई ना कोई कर्म हुआ होगा। तो ये तो एक जनरल प्रोटोकॉल है, जनरल। अच्छा, पिछले जन्म के पाप खतकर्म कैसे नष्ट हुए होंगे? भक्ति किए बिना तो? ये ठाकुर जी क्यों खामखाई चक्कर में डाल रहे हो सब लोग? भाई पिछले जन्म के कर्म क्या भक्ति भजन के बिना नाश हो सकते? क्योंकि पुण्य से तो होते नहीं, पुण्य से। और मैं हमेशा कहता हूं कि भक्ति भजन किसी कर्म का फल तो ये एक जनरल प्रोटोकॉल है कि भाई ऐसा ऐसा होता है। मतलब ये उन लोगों की, भगवान ने स्वयं एक महिमा की है कि देखो मेरी भक्ति में आने वाले लोग ऐसे होते हैं क्या, कि एक तो उनके पिछले जन्म के पाप सच्ची बात है ये। लेकिन एक बात बताओ बच्चों, कि पिछले जन्म के पाप, जिसके पिछले जन्म के पाप कर्म, भाई सिंह सीधी बोलो ना, उच्छेदन हो गए, कौन सब जगह समाप्त हो गए हैं। तो मैं अब सवाल ये पूछता हूं कि जो पिछले जन्म के पाप समाप्त हुए, वो पिछले जन्म में हुए या इस जन्म में हुए? पिछले जन्म के पाप, भाई कृष्ण ने कहा जिनके पिछले जन्म के पाप समाप्त हो गए, नष्ट हो गए, उच्छेदन हो गए, तो वो पिछले जन्म में ही हुए या इस जन्म में हुए? भी आप है?
मैं
क्यों?
क्योंकि पुण्य कर्म किए तो
पिछले जन्म के कर्म अगर पिछले जन्म में हो जाते तो जन्म ही क्यों लेते? वही डिकोड में मेरा ठाकुर कहता है, वो जैसे टेढ़ा खड़ी रहता है ना, खड़ी नहीं खड़ा रहता है। जैसे टिकड़ा खड़ा रहता है ना, ये उसकी बातें भी ऐसी उलझा देने वाली। इसीलिए तो उसने कहा देखो मेरी बातें तुम्हारी समझ में
नहीं,
जाओ गुरु के पास जाओ, वो तुम्हें समझा, क्योंकि मेरी बातें समझते समझते तुम पागल हो जाओगे, नहीं समझ पाओगे, इसलिए जाओ गुरु के पास, वो समझाएगा। तद्विधि पढ़ो, उनसे पूछो जाके, पूछने के रिकमेंडेशन की है। तो भाई गुरु महाराज गोविंद, अगर पिछले जन्म के कर्म पिछले ही जन्म में पाप समाप्त हो गए होते तो जन्म ही क्यों लेता आपके पास ना बेटा, ये मेरे मथे क्यों लगे? मतलब पिछले जन्म के कर्म पिछले ही जन्म में समाप्त नहीं हुए थे तभी तो जन्म लिया, मानते हो भाई ये बात? अब इस जन्म में उसके पुण्य कर्म उदय हुए तो उससे क्या मिली? भक्ति मिली, ऐसे ही है ना श्लोक, मेरी शरण में आते सेवा में तत्पर होते हैं। तो अब सेवा में तत्पर होते हैं तो किसी ने तो सेवा में उसको लगाया होगा भाई, बॉस के बिना नौकरी नहीं मिलती है। बोलो ये गुरु के बिना सेवा नहीं मिलती, क्योंकि जहां तक सेवा का संबंध है तो सद्गुरु ही देता है, वो नहीं है मुकुत भुगुत जुगुत तेरी सेवा तू आपे करना। हे गुरुदेव ये आप जो सेवा करवाते हो ये भी आपकी एक कृपा है। जैसे आप एप्लीकेशन में क्या लिखते हो, काइंडली, क्या लिखते हो, काइंडली एक्सेप्ट नाई दिस एप्लीकेशन। एप्लीकेशन खुद शब्द अप्लाई से निकला, शब्द अप्लाई से ही एप्लीकेशन, अप्लाई मतलब अपील करना, अर्जी करना। अर्जी स्वीकार कब होती है? जब वो दया करता है ना? तो ये जो सेवा हमें मिली है, जो सेवा में तत्पर है, तो बॉस के बिना स्वामी के बिना सेवा कैसी? क्योंकि दोनों एक ही के साथ आया है, स्वामी तो सेवक, सेवक स्वामी, जैसे दिन रात ऐसे स्वामी और सेवक का पेयर बनता है। तो ये जो सेवा में तत्पर है उसको किसी ने तो सेवा लगाया होगा और वो है गुरु महाराज। ऐसे इनडायरेक्टली इनको गुरु की प्राप्ति हो चुकी है। अब सेवा कर रहे हैं, अब सेवा करते 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 आ गया आठवें 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, जिसमें कहा सर्वधर्मान। अब भाई ये जो तुम सेवा कर रहे हो इधर की उधर की सब सेवाएं, वो अब तुम मेरी शरण में आ जाओ, अब मेरी शरण में आ जाओ तो अब शरण में लाने वाला भी तो कोई, क्योंकि हम में तो सामर्थ्य नहीं, हम में तो कोई सामर्थ्य है क्या? भाई बेटी कहती पापा मुझे आना है, पापा कहता बेटी आ जाओ, तो बेटी कहती पापा आओ तो सही लेकिन किसके साथ आओ, पापा किसी को तो भेजो, तो बोलेंगे नहीं अपने हस्बैंड, बोला वो पता है लाने वाला है मुझे, लाने वाला 10 तो बहाने करेगा, जॉब में जाना ये करना वो करना वो करना वो करना, दोस्तों के साथ जाना है तो चला जाएगा, ऐसे मोस्टली स्त्रियां कहती है। तो जब बेटी अपने पिता को कहती है कि कोई लाने वाला नहीं है, ऐसे बेटा इस संसार में भी कृष्ण की शरण में कोई लाने वाला नहीं है, एक ही गुरु महाराज। फिर पिता क्या करते हैं, चल बेटा तुझे कोई लाने वाला नहीं तो मैं भेजता हूं। ऐसे कृष्ण देखता है कि इनको कोई मेरी शरण में लाने वाला नहीं है तो मैं भेजता हूं, और वो हमारे गुरुदेव होते हैं। और गुरुदेव क्या करते हैं, हमें कृष्ण की, क्योंकि हमने पहले गुरुदेव को देखा फिर कृष्ण को, पहले गुरुदेव को सुना फिर कृष्ण को, पहले गुरुदेव ने हमारी शंकाओं का समाधान किया तो श्रद्धा उत्पन्न हुई। तो हमारी श्रद्धा का देखो सुनो, मुक्ति का दाता कृष्ण, क्या बोला, मुक्ति कृष्ण देता है, लेकिन कृष्ण कौन देता है, गुरु महाराज देता है। ये कोई मामूली बात नहीं समझ, मुक्ति पाप नाश करती है कृष्ण की भक्ति, और भक्ति देने वाले गुरु महाराज। मोक्ष यम से छुड़वाता है हरि का कृष्ण नाम, और कृष्ण नाम के दाता गुरु महाराज। आई समझ, नित्य भजो श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र विहारी लाल निधाय जय जय श्री राधे जय जय श्री।